तभी दूसरा नकाब वाला आदमी कहता है, देखो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप इस लड़की को यहीं पर छोड़ दो और जाओ यहां से, वरना हमें एक मिनट नहीं लगेगा तुम्हें जान से मारने में। पृथ्वी देखता है, जानवी भी बेहोश हो चुकी थी और उसके हाथों से खून अभी भी बह रहा था। पृथ्वी ने गुस्से में उन लोगों को देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम लोगों को शायद इस जगह के बारे में पता नहीं है, या फिर यहां आने से पहले तुमने यहां की ठीक से जांच नहीं की थी, तभी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। उसके बाद पृथ्वी एक काले नकाब वाले आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, सीटी बजानी आती है? वो आदमी हैरानी से पहले अपने आदमियों को देखता है और फिर पृथ्वी को देखकर कहता है, हाँ आती है। पृथ्वी मुस्कुराते हुए कहता है, प्लीज एक सीटी बजा दो ना, वैसे तो मैं खुद ही सीटी बजा देता, लेकिन इस वक्त मेरे गोद में लड़की है। तुम मेरे लिए इतना काम कर दो और उसके बाद तुम्हें इसका इनाम जोरदार मिलेगा। वो सभी आदमी एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हुए पृथ्वी को देखने लगते हैं। उन सबकी हंसी डरावनी थी। उनका लीडर कहता है, क्यों बच्चे, एक बार मौत का डर दिखाया तो सीटी बजाने की बात करने लगा। चल तेरे लिए तेरी आखिरी इच्छा समझकर हम सीटी भी बजा देते हैं, ए बाजरे सिटी। वो आदमी जल्दी से सीटी बजाता है। दो जोरदार सीटियां ही बजी थी कि अचानक से दरवाजा खुलता है और रॉयल गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। उन सभी रॉयल गार्ड्स के हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गन थी और उन सबने नकाबपोश आदमियों को घेर कर रख लिया था। वो सारे आदमी जब रॉयल गार्ड्स को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक हैरानी से पूछता है, ये सब कहां से आए? पृथ्वी उनकी हैरानी पर मजे लेते हुए कहता है, ये बात तो मुझे भी आज तक पता नहीं चली, पता नहीं कहां छुपे रहते हैं, लेकिन रहते मेरे आसपास ही हैं। वैसे अब तुम लोगों के पास पूरा टाइम है, आराम से इनसे पूछ लेना और फिर पता चल जाए तो मुझे भी बता देना कि ये लोग मिस्टर इंडिया बनकर आखिर छुप कहां जाते हैं। पृथ्वी जानवी को अपनी गोद में सही से उठाते हुए कहता है, गार्ड्स इनकी खातिरदारी अच्छे से करना। पृथ्वी जानवी को लेकर मुड़ता ही है कि एक आदमी पृथ्वी से पूछता है, अरे भाई जब मौत के फरिश्तों से मिलवा ही दिया है तो ये बता दो कि तुम कौन हो। पृथ्वी हंसता हुआ उसे देखता है और कहता है, यमराज। और उसके बाद पृथ्वी जानवी को अपनी गोद में लेता हुआ बाहर आ जाता है। जैसे ही पृथ्वी प्राइवेट क्लब के बाहर आता है तो देखता है रोशन अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है, और पृथ्वी को देखकर वो जल्दी से गाड़ी का बैक दरवाजा खोल देता है। पृथ्वी जानवी को लेकर रोशन की गाड़ी में आता है और उसे बेडशीट पर लेटाता है। रोशन पृथ्वी से कहता है, डॉक्टर का फर्ज अच्छी तरह से याद है मुझे, लेकिन कभी कभी बीच में भूल जाता हूँ, पर कुछ भी बोल, ऐसे डेंजर सिचुएशन पर तुझे फर्ज याद आ रहा था, मुझे मेरी मम्मी याद आ रही थी। पृथ्वी हंसता हुआ कहता है, आंटी को मेरा हेलो कहना और तेरी गाड़ी ले जा रहा हूँ। रोशन नामे है सर हिलाता है और पृथ्वी रोशन की गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। पृथ्वी की गाड़ी सीधे रॉयल गेस्ट हाउस रुकती है। ये गेस्ट हाउस महल से थोड़ी ही दूरी पर है। जब भी कोई खास मेहमान आता है तो आस्तिक उसे रॉयल गेस्ट हाउस में रुकने को देता है, क्योंकि घर में प्रणाली और कीर्ति दोनों मौजूद थे। ऐसे में किसी बाहर वाले का घर में रहना आस्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पृथ्वी जानवी को लेकर सीधे गेस्ट रूम जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए जल्दी से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। पृथ्वी जल्दी से जानवी के घाव की पट्टी करता है, क्योंकि जानवी का खून बहुत ज्यादा बह गया था इसीलिए वो उसे इंजेक्शन देता है, जिससे वो आराम से सोई रहे और पृथ्वी अपना काम कर सके। जानवी के हाथों की पट्टियां हो गई थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से वो अभी भी बेहोश थी। वहां पर मौजूद सर्वेंट को पता चल गया था कि पृथ्वी गेस्ट हाउस आया हुआ है। वो लोग जल्दी से उसके पास आते हैं और कहते हैं, छोटे साहब आपको कुछ चाहिए क्या? पृथ्वी जानवी के हाथों की पट्टियां करते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए कहता है, नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये लड़की घायल है और इसे सुबह तक होश आएगा, तब तक तुम इसके पास रहना और हो सके तो इसके कपड़े बदल देना, मैं भी घर जा रहा हूँ, सुबह आकर देखता हूँ। सर्वेंट ने हाँ में सर हिलाया और पृथ्वी एक नज़र जानवी को देखकर वहां से चला जाता है। वो सर्वेंट जब बेड के पास आता है और जानवी को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जानवी ने घाघरा चोली पहना हुआ था, वो भी चटक रंग का। इतना गाढ़ा मेकअप किया हुआ था, ऊपर से जानवी का वो घाघरा चोली कहीं से भी सभ्य नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह महल में एक अलग ही हलचल थी, क्योंकि आज अमृता ताई आने वाली थी। अरुणिमा अमृता ताई का कमरा तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे आस्तिक ने इस चीज की जिम्मेदारी दी थी, अगर एक चीज की भी गलती होती तो अरुणिमा की खैर नहीं थी। अरुणिमा हर काम बहुत सोच समझ कर रही थी। बेडशीट पर एक भी सिलवट नहीं थी और तकिया भी सलीके से लगे हुए थे, पर्दे के एक एक मोड़ सही तरीके से फिट थे और फूलदान में ताजे फूल लगे हुए थे। अरुणिमा हर काम को करने से पहले उसे दो बार चेक करती कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें गलती निकलती तो ये आस्तिक के लिए एक मौका था और अरुणिमा उसे मौका ही तो नहीं देना चाहती थी। अरुणिमा को जब लगा कि अब सब कुछ ठीक है तो उसने चैन की सांस ली और वो बाहर हॉल में आ गई, जहां पर सब लोग बैठे हुए थे। पृथ्वी ने अरुणिमा को देखकर अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अरुणिमा सोफे के पास आती है और आस्तिक से थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है।
उसे इजाजत नहीं थी उन सबके साथ बैठने की, और अगर उसे बैठना भी होता तो नीचे जमीन पर। बाहर से एक सेवक आता है और आस्तिक से कहता है, राजा साहब अमृता ताई आ गई हैं। आस्तिक और उसके सभी भाई बहन ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। वो दरवाजे की तरफ चल देते हैं। अरुणिमा भी धीरे धीरे आस्तिक के पीछे चलने लगती है, और बस वो अपने मन में यही सोचती है कि ये अमृता ताई जो कोई भी है, बस ये आस्तिक जैसी खतरनाक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका जीना सच में दूभर है। सब लोग मेन गेट के पास खड़े थे, तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है और एक सेवक जल्दी से पिछला दरवाजा खोलता है। सब लोगों के चेहरे पर खुशी देखते बन रही थी, लेकिन अरुणिमा की नजरें सिर्फ गाड़ी के दरवाजे पर थीं। तभी उस गाड़ी से एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर निकलती है। अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उस औरत ने नन के कपड़े पहने हुए थे और उसके गले में क्रॉस का लॉकेट भी था। ये महिला तो क्रिश्चियन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आस्तिक और उसके भाई बहन तो हिंदू हैं। अगर ये लोग हिंदू हैं तो इनकी ताई क्रिश्चियन कैसे हो सकती है?